हाँ, आज हमारे पास मध्यकालीन भारत से कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी मटेरियल है।
हाँ
ये भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में है,
ओ हाँ
और ये सिर्फ मतलब राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है, ये उन कवियों, संतों और फकीरों की कहानियां हैं जिन्होंने समाज को बदलने की हिम्मत की।
बिल्कुल।
तो चलिए आज इन आध्यात्मिक विद्रोहियों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसे प्रेम और समानता का एक नया रास्ता दिखाया।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी।
अच्छा,
उस दौर में जब समाज जाति, धर्म और लिंग के बंधनों में आप कह सकते हैं जकड़ा हुआ था, इन लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इन सब दीवारों से परे है,
और वो रास्ता था भक्ति का,
भक्ति और प्रेम का।
और इस पूरी क्रांति की एक सबसे चौंकाने वाली बात थी इसमें महिलाओं की भूमिका।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आमतौर पर इतिहास तो पुरुषों के बारे में ही लिखा जाता है ना, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस आंदोलन में महिलाएं भी आगे थीं।
हाँ, और वो सिर्फ अनुयायी मतलब फॉलोअर्स नहीं थीं, वो तो पथ प्रदर्शक थीं, लीडर्स थीं।
अच्छा,
और दक्षिण भारत में हमें इसके दो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। पहली थी अंडाल, एंडाल, जो एक आलवार संत थीं।
आलवार संत यानी जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे।
हाँ, अंडाल ने खुद को विष्णु की प्रेयसी माना और उनके प्रेम में ऐसी कविताएं लिखी जो आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में गाई जाती हैं।
मतलब उन्होंने अपनी भक्ति को, अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के दुनिया के सामने रख दिया।
बिल्कुल, उन्होंने धर्म के उस पुरुष प्रधान ढांचे को चुनौती दी।
और दूसरी संत थी कराईकाल अम्मयार, वो एक नैनार संत थी, मतलब शिव भक्त।
हाँ, और उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी है।
कैसे?
उन्होंने भक्ति के वो रास्ता चुना जिसे सोर्स में एक्सट्रीम एसिटिसिज्म कहा गया है, यानी कठोर तपस्या। उन्होंने सुंदरता, सामाजिक जीवन,
शादी, परिवार,
हाँ, ये सब कुछ त्याग दिया ताकि वो पूरी तरह से शिव की भक्ति में लीन हो सके। आप सोचिए, उस जमाने में एक औरत की पहचान उसकी शादी और परिवार से होती थी।
हाँ, बिल्कुल।
तो उनका ये कदम कितना बड़ा विद्रोह रहा होगा।
सही बात है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक 3 मार्क्स का सवाल हो सकता है।
हाँ, बिल्कुल।
सो रिमेम्बर दिस, अंडाल आलवार यानी विष्णु भक्त और कराईकाल अम्मयार नयनार यानी शिव भक्त।
एग्जैक्टली, और दोनों ने ये साबित कर दिया कि भक्ति का मार्ग किसी एक तरीके का मोहताज नहीं है और इस पर चलने का हक सबको है, चाहे वो पुरुष हो या महिला।
ये बंधन सिर्फ समाज के ही नहीं थे, मुझे लगता है भाषा के भी थे।
बिल्कुल,
और ये बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है कि कैसे सूफी संतों ने भारत आकर यहाँ की स्थानीय भाषाओं को अपनाया, खासकर चिश्ती सिलसिले ने।
ये उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। देखिए, उस समय जो राज दरबार की भाषा थी वो थी फारसी,
पर्शियन। हाँ,
और जो धर्म कर्म की भाषा थी वो थी संस्कृत।
सही बात।
तो आम आदमी इन दोनों से ही कटा हुआ था।
सही बात।
तो चिश्ती सूफी जब भारत आए तो वो समझ गए कि अगर लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो
रोने की जमान में बात करनी होगी।
तो उन्होंने हिंदवी को अपनाया, जो उस समय की आम बोलचाल की हिंदी थी।
हाँ।
उनकी जो सभाएं होती थी, जिन्हें खानगाह कहते हैं, वो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर जैसे थे, है ना?
बिल्कुल,
वहाँ हर कोई आ सकता था और सारी बातचीत हिंदवी में होती थी।
और सिर्फ बातचीत ही नहीं, इसमें संगीत का भी बड़ा रोल था, है ना? सोर्स में समा का जिक्र है।
हाँ, समा यानी डिवोशनल म्यूजिक।
हाँ।
वो कोई क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं होता था। हाँ। वो एक ऐसा माहौल था जहाँ संगीत और भक्ति में डूबकर लोग सीधे ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते थे।
और ये संगीत भी स्थानीय बोलियों में होता था।
बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाबा फरीद। उन्होंने अपनी कविताएं पंजाबी में रची
और उनकी रचनाएं इतनी असरदार थीं कि सदियों बाद जब सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया गया
तो उसमें बाबा फरीद के शब्द भी शामिल किए गए।
ये बहुत बड़ी बात है।
ये बात छोटी नहीं है। सोचिए, एक मुस्लिम सूफी संत की वाणी एक दूसरे धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का हिस्सा बन गई। ये दिखाता है कि उस दौर में आध्यात्मिकता कितनी फ्लूइड थी।
तो यहाँ एग्जाम पॉइंट क्या होगा?
ये भी 3 मार्क्स का सवाल है। इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं, हिंदवी, खानका, समा और बाबा फरीद।
ठीक है, और दीवारों को गिराने की बात करें तो कबीर का नाम तो सबसे पहले आता है।
हाँ,
वो तो मानो हाथ में हथौड़ा लेके ही निकले थे हर दीवार को तोड़ने के लिए।
बिल्कुल सही कहा, कबीर भक्ति आंदोलन के शायद सबसे क्रांतिकारी और निडर संत थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था निर्गुण भक्ति का विचार, मतलब उस समय धर्म का मतलब था मंदिरों में रखी मूर्तियां, मस्जिदें या फिर बड़े बड़े कर्मकांड।
सही।
कबीर ने आकर कहा, ये सब बाहरी दिखावा है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, फॉर्मलेस है।
और वो किसी एक धर्म के नहीं थे, उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के पाखंड पर बराबर चोट की।
हाँ, वो मूर्ति पूजा का भी मजाक उड़ाते थे और मुसलमानों के कर्मकांडों पर भी सवाल उठाते थे। उन्होंने ब्राह्मणों और उलेमा दोनों की सत्ता को चुनौती दी।
और उनकी भाषा बहुत कमाल की थी।
हाँ, वो बहुत चतुराई से अपनी बात कहते थे। वो एक ही सांस में अल्लाह, खुदा, पीर जैसे इस्लामिक शब्द इस्तेमाल करते थे और साथ ही अलख, निराकार जैसे वैदांतिक शब्द भी।
तो इससे होता ये था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को लगता था कि कबीर हमारे हैं,
जबकि कबीर किसी के नहीं बल्कि सबके थे।
तो उनका रास्ता क्या था? अगर मंदिर मस्जिद नहीं, पूजा नमाज नहीं, तो फिर ईश्वर को कैसे पाया जाए?
कबीर के अनुसार रास्ता बहुत सीधा और सरल था। नाम सिमरन।
नाम सिमरन
यानी सच्चे दिल से ईश्वर का नाम याद करना। और ये रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत था।
तो यही उनकी शिक्षाएं सामाजिक और धार्मिक सद्भाव का आधार बनी।
बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल है 8 मार्क्स का।
अच्छा,
तो इसमें निर्गुण भक्ति, उनकी सामाजिक आलोचना, भाषा और सद्भाव पर उनका प्रभाव, ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे। रिमेम्बर दिस, कीवर्ड्स है निर्गुण भक्ति, निराकार और नाम सिमरन।
और कबीर का ये एक निराकार ईश्वर का विचार, ये गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में भी बहुत साफ दिखाई देता है ना?
हाँ, बिल्कुल। गुरु नानक देव जी भी निर्गुण भक्ति के ही संत थे और उनकी शिक्षाएं सिख धर्म का आधार बनी।
उनका भी यही मानना था कि ईश्वर एक है।
हाँ, एक है, निराकार है, फॉर्मलेस है और उसे किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढा जा सकता। उन्होंने भी हर तरह के कर्मकांड जैसे यज्ञ, बलि, इन सबको पूरी तरह खारिज कर दिया।
पर उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपनी शिक्षाओं को एक संस्थागत रूप दिया, एक कम्युनिटी बनाई।
बिल्कुल। और ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित किया और दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथाएं शुरू की,
संगत और लंगर।
हाँ, संगत यानी सब लोगों का एक साथ बैठकर शब्द या भजन कीर्तन करना, और लंगर यानी एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करना।
लंगर की प्रथा तो आज भी सिख धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ मुफ्त भोजन नहीं है, ये समानता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है।
एग्जैक्टली। सोचिए, उस समाज में जहाँ जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को छूने से भी कतराते थे, वहाँ गुरु नानक ने राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सबको एक साथ एक ही पंक्ति में बिठा दिया।
ये एक सामाजिक क्रांति थी।
ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। उन्होंने बातों से नहीं, अपने काम से दिखाया कि उनकी नज़र में सब इंसान बराबर हैं।
तो ये भी एक 8 मार्क्स का सवाल बन सकता है।
हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट, कर्मकांड और जाति का विरोध, और फिर नाम सिमरन, संगत और लंगर, ये पॉइंट्स जरूर लिखने हैं।
ठीक है, अगर हम वापस सूफीवाद की तरफ चलें, तो चिश्ती सिलसिले में गुरु का यानी पीर का बहुत महत्व था।
हाँ, बहुत ज्यादा।
ये गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी?
चिश्ती सूफीवाद में पीर या शेख की भूमिका केंद्रीय थी। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता था,
एक स्पिरिचुअल गाइड।
हाँ, जो अपने शिष्यों यानी मुरीदों को ईश्वर के रास्ते पर ले जाता था, और ये मुरीद अपने पीर के साथ उनकी खानकाह में रहते थे, जो एक तरह का आश्रम या मठ होता था।
और ये रिश्ता पीर की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता था, राइट?
नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता था। पीर की मृत्यु के बाद उनकी कब्र को दरगाह बना दिया जाता था, जो भक्ति और आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाती थी।
जैसे अजमेर में ख्वाजा मुनियुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
बिल्कुल, आज भी वहाँ हर धर्म के लोग जाते हैं और इस दरगाह की यात्रा को जियारत कहते हैं।
और एक शब्द आता है उर्स, इसका क्या मतलब है?
उर्स का अरबी में मतलब होता है विवाह।
विवाह?
हाँ, सूफियों का मानना है कि पीर की मृत्यु असल में उसका परमात्मा से मिलन है, एक तरह का आध्यात्मिक विवाह। इसलिए वो पीर की पुण्यतिथि पर शोक नहीं मनाते बल्कि जश्न मनाते हैं।
अच्छा।
और इसी जश्न को उर्स कहते हैं, जिसमें संगीत यानी समा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ भक्ति आंदोलन में गुरु को महत्व दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ सूफीवाद में पीर को, काफी समानताएं दिख रही हैं।
बहुत ज्यादा समानताएं हैं, और यही इस पूरे दौर की खूबसूरती है। दोनों परंपराएं मोनोथीइज्म यानी एक ईश्वर में विश्वास रखती थीं।
बिल्कुल।
दोनों का मानना था कि ईश्वर से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है इंसानियत से प्रेम करना।
और दोनों ने ही कर्मकांड और कट्टरपंथ का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों और उलेमाओं की सत्ता को चुनौती दी।
हाँ।
और कहा कि भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, दोनों ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, और सबसे बढ़कर दोनों का जोर बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि अंदरूनी भक्ति और प्रेम पर था।
तो ये समानता वाला सवाल भी 8 मार्क्स के लिए जरूरी है।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक सवाल है।
हमारे सोर्सेज में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसका क्या मतलब है?
इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब है जब कोई बड़ी स्थापित धार्मिक परंपरा किसी स्थानीय देवी या देवता या उनकी पूजा पद्धति को अपने अंदर समाहित कर लेती है।
अच्छा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है।
हाँ, एक तरह से मुख्य धारा का स्थानीयकरण। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ।
तो भगवान जगन्नाथ हमेशा से विष्णु के रूप नहीं माने जाते थे?
इतिहासकारों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ मूल रूप से एक स्थानीय आदिवासी देवता थे।
ओह।
उनकी पूजा का तरीका, उनकी लकड़ी की मूर्ति, ये सब ब्राह्मणवादी परंपराओं से बहुत अलग था। लेकिन समय के साथ वैष्णव परंपरा ने उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया और उनकी पूजा को अपना लिया।
तो इस तरह एक स्थानीय पंथ एक बड़े धर्म का हिस्सा बन गया।
हाँ, ये दिखाता है कि धर्म कैसे स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है और अपने आसपास की चीजों को खुद में शामिल करता रहता है।
और इसी तरह का एक अनोखा आंदोलन कर्नाटक में भी हुआ था, वीरशैव या लिंगायत आंदोलन।
हाँ, ये 12वीं सदी में बसवन्ना नाम के एक समाज सुधारक के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये शिव के उपासक है, लेकिन ये शिव की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करते।
तो फिर कैसे?
वो लिंग के रूप में करते हैं, जिसे वो चांदी के एक छोटे डिब्बे में अपने शरीर पर हमेशा धारण किए रहते हैं।
और इन्होंने भी जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था।
सिर्फ विरोध ही नहीं किया, उन्होंने उसे जड़ से खारिज कर दिया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं माना, जो हिंदू धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है।
अच्छा।
उनका मानना था कि भक्त मृत्यु के बाद सीधा शिव में विलीन हो जाता है, वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, इसीलिए वो अपने मृतकों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं।
Bury their dead।
और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, जो उस समय के लिए तो एक बहुत ही प्रगतिशील बात रही होगी।
बिल्कुल।
वीर शैव आंदोलन हर मायने में एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। उन्होंने धर्म को कर्म कांडों से आजाद कर उसे सामाजिक बराबरी का हथियार बनाया।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि भक्ति और सूफी आंदोलन सिर्फ पूजा पाठ के नए तरीके नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सामाजिक समानता, मानवीय प्रेम और भाषाई एकता की एक जबरदस्त लहर थी।
बिल्कुल।
कबीर हो, नानक हो, अंडाल हो या चिश्ती संत, सबका संदेश एक ही था।
हाँ, एक ही था
कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता कर्म कांडों के जंगल से नहीं बल्कि प्रेम के सीधे साधे रास्ते से होकर जाता है।
सही कहा। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। उस दौर में इन संतों ने धर्म को आम इंसान की भाषा और उसके भावनाओं से जोड़ा था, क्या आज के इस दौर में, जब धर्म के नाम पर दीवारें और ऊंची होती जा रही हैं, हमें फिर से कबीर और नानक जैसे किसी आध्यात्मिक विद्रोही की जरूरत है?
जो हमें याद दिला सकें।
हाँ, जो हमें याद दिला सकें कि इंसानियत का रिश्ता हर मजहब से बड़ा होता है। ये एक सोचने वाली बात है।